सत्य जो पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखने के लिए आपकी अगुवाई करता है। यहोशू की किताब अध्याय 4 वचन 23। क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा। यरदन नदी की घटना हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों के परिणाम जो मौत आई थी उसे संपूर्ण रीति से हराया है। मैं सत्य के खूबसूरत सुसमाचार के बारे में बोलना चाहता हूं जो हमें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्रदान करता है। मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को इसराइल के अगुवे के रूप में नियुक्त किया। मूसा पुराने नियम की व्यवस्था का प्रतिनिधि था। यदि मूसा इसराइल के लोगों के साथ यरदन नदी पार करके कनान देश में आता तो यहोशू को लोगों का अगुवा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि परमेश्वर ने मूसा को केवल कनान देश के सामने के भाग में आने दिया और उसे अंदर प्रवेश करने से रोक रखा। हमारे प्रभु ने हमें मूसा और यहोशू दिए। मूसा पुराने नियम की व्यवस्था का प्रतिनिधि इसराइल के लोगों को कनान के देश में नहीं ले जा सका। यदि उसने व्यवस्था के अधीन रहकर ऐसा किया होता तो वह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना के खिलाफ में हो जाता। कोई भी व्यवस्था के सामने अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सका था, क्योंकि व्यवस्था पापों की पहचान कराने के लिए होती है। रोमियो अध्याय 3 वचन 20। परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दी, उसका कारण था उसे पाप का ज्ञान देना था। व्यवस्था को सिखाने वाला बनाया और उसे मसीह की ओर अगुवाई की, जिससे कि वह विश्वास के द्वारा न्यायी बने। गलातियों की पत्री अध्याय 3 वचन 24। हालांकि व्यवस्था यीशु को ढूंढने के लिए मार्गदर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोगों को यीशु की जरूरत थी और इसलिए यीशु को इस जगत में आना पड़ा। परमेश्वर ने यहोशू को आदेश दिया था कि वह इसराइल के लोगों को यरदन नदी पार करे और कनान देश में प्रवेश करे। परमेश्वर उन्हें मूसा के मृत्यु के बाद उनके नए अगुवे के साथ कनान देश में लेकर गए। यहोशू ने लोगों से सरदारों को आदेश दिया। यहोशू अध्याय 1 वचन 11। छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पास उतरकर देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। मूसा से असंभव हुआ तब परमेश्वर ने यहोशू को कनान देश में प्रवेश करने का आदेश दिया और कहा, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेश कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। यहोशू अध्याय 3 वचन 8 से 10। मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को इसराइल के अगुवे के रूप में नियुक्त किया और उसे इसराइल के लोगों के साथ कनान देश में प्रवेश करने का आदेश दिया। यहोशू नाम का मतलब है उद्धार करता। यीशु और होसे का समानार्थी। परमेश्वर के सेवक यहोशू ने याजकों को आदेश दिया कि वे वाचा के संदूक को उठा ले और इसराइल के लोगों के साथ यरदन नदी को पार करें। जब याजकों ने संदूक को उठाया और उनके पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा जाता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल आराबा का ताल हा खाल ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। यहोशू अध्याय 3 वचन 15 और 16। इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि उसने पाप और मनुष्य जाति के न्याय के कारण जो मृत्यु आई थी उसे संपूर्ण रीति से हरा दिया था। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मरा था। इस रीति से उसने मनुष्य जाति के कनान देश में अगुवाई देकर उनके पापों से बचाया जो स्वर्ग का राज्य है। यरदन नदी वो जगह है जहां मनुष्य जाति को शुद्ध किया गया। पुराने और नए नियम में यरदन नदी के आसपास की ऐतिहासिक घटना मनुष्य जाति के पापों के कारण उत्पन्न हुए श्राप और न्याय से उद्धार पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यर्दन नदी को मृत्यु की नदी और मृत सागर के रूप में दर्शाया गया है। यर्दन शब्द का मतलब है ऐसी नदी जो केवल नीचे की ओर बहती है, मृत्यु की ओर, या डूबना, दबाना, दबाव डालना, छोड़ना। यह स्पष्ट रूप से मनुष्य जाति के पापों का इतिहास दर्शाता है। इस नदी में यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था और फिर क्रूस पर मरा और मनुष्य जाति के बदले में पापों का न्याय उठाया। हम आदम और हवा के वंशज कहां की ओर जा रहे हैं? हालांकि सारी सृष्टि पाप के साथ पैदा हुई थी, इसलिए वे पाप करते हैं और उस पापों की कीमत के रूप में वे मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में सारे प्राणी अपने जन्म से ही नाश की ओर जा रहे हैं। भले ही वे अपने पापी स्वभाव को नियंत्रित करने का कठिन प्रयास करें, लेकिन वे कभी नहीं कर सकते और इसलिए वे अपने पापों के लिए आखिरी न्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि परमेश्वर ने पाप और न्याय के प्रवाह को काट दिया है। परमेश्वर ने यहोशुआ को इसराइल के लोगों के साथ यर्दन नदी पार करने कनान देश में ले गया। यहोशुआ के लिए यह परमेश्वर की इच्छा थी। यह कहानी सुझाव देती है कि पाप से मुक्त होने के लिए हमें पाप का मूल्य चुकाना चाहिए, जो मृत्यु है, और इस कीमत के द्वारा हम हमारे सारे पापों से शुद्ध होंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। पुराने नियम में नदी का बहाव रुक गया और जब याजकों ने वाचा के संदूक के साथ नदी में पांव रखा तब वह कोरी भूमि में बदल गई। इसने इसराइल के लोगों को नदी पार करने की अनुमति दी। यह पापों की माफी थी जो केवल उन लोगों को दी गई थी जो खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते थे। वह पानी और आत्मा का सुसमाचार था जिसने मनुष्य जाति के लिए पाप की कीमत चुकाई, और हम इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करके पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं। सेनापति नामान, जो दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 में दिखाई देता है, जो सीरिया का महान और सम्मानित सेनापति था जिसने अपने देश को दुश्मनों से बचाया था। वह एक कोढ़ी भी था जो अपने श्राप के कारण सब कुछ खोने के लिए नियोजित किया गया था, लेकिन बाद में उसने खूबसूरत सुसमाचार सुनने की वह श्राप से बच सकता है। उसे कहा गया था कि यदि वह इसराइल में जाकर परमेश्वर के सेवक से मिले तो वह चंगा हो सकता है। वह एक छोटी बंधक लड़की थी जिसने उसको यह खबर दी थी। उसने कहा था, दूसरे राजा अध्याय 5:3, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उसने इस सुसमाचार पर विश्वास किया और वह इसराइल गया। जब वह एलिसा के घर के सामने पहुंचा तब एलिसा ने एक दूत को उसके पास यह कहला भेजा, दूसरा राजा के पुस्तक अध्याय 5:10, तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। चमत्कारी चंगाई की आशा से नामान क्रोधित हो गया और अपने देश वापस जा रहा था। हालांकि उसके सेवक ने उसे आग्रह किया, उसके कारण उसने एलिशा की बात मानी और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। तब उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। इसी तरह हमें यह जानना चाहिए कि हमारे सारे पापों से माफी पाने के लिए हमें हमारे खुद के विचारों को छोड़ना होगा और बाइबल में जो लिखा है उसे स्वीकार करना होगा। तब हमें खूबसूरत आशीष दी जाएगी। जो कोई भी उद्धार पाना चाहता है उसे परमेश्वर के वचन का पालन करना है और पूरी रीति से उस पर विश्वास करना है। बाइबल कहती है कि यीशु के बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार से जगत के सारे पाप शुद्ध हो गए हैं। हमें आज्ञाकारी नामान की तरह नहीं सोचना है। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के बगैर हमारे पापों से कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमारे सारे पापों से माफी पाने के लिए हमें पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए। जैसे नामान पानी में 7 बार डुबकी लगाने से शुद्ध हुआ, उसी तरह हमें भी विश्वास करना चाहिए कि यीशु के बपतिस्मा, क्रूस पर उसकी मौत और पुनरुत्थान के खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करके हम भी शुद्ध हो सकते हैं। यर्दन नदी में हुए इस चमत्कार की वजह से आदम के सारे वंशजों को आशीष मिली कि उनके सारे पापों को मिटा दिया गया है और न्याय का अंत हुआ है। आदम और हव्वा ने शैतान के प्रलोभन में गिरकर पाप करने के बाद सारी मनुष्य जाति को एदन वाटिका में से बाहर निकाल दिया था। हालांकि यर्दन नदी में जो घटना हुई थी वह खूबसूरत सुसमाचार था जिसने सारी मनुष्य जाति को एदन वाटिका में वापस लौटने की अगुवाई की। यर्दन नदी की घटना। बाइबल में खूबसूरत समाचार दर्ज है कि यीशु ने यर्दन में सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती अध्याय 3:15 में लिखा है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। बाइबल बताती है कि जब यीशु ने यर्दन में बपतिस्मा लिया तब सारे पाप उसके ऊपर डाले गए। दूसरे शब्दों में यीशु का बपतिस्मा वह घटना थी जिसने उन पापों को निकाल दिया जिसने मनुष्य जाति को बांध के रखा था। इस तरह यीशु ने पापों का अंत किया और फिर क्रूस पर अपने लहू से हमें उद्धार दिया। यर्दन नदी बपतिस्मा की नदी है जिसने हमारे सारे पापों को साफ किया है। हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर गए क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि यीशु ने यर्दन नदी में बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर मरने के द्वारा कीमत चुकाई है। यह खूबसूरत सुसमाचार है जो हमारे प्रभु ने मनुष्य जाति को दिया है। मनुष्य जाति के सारे पाप आदम से शुरू हुए हैं, लेकिन यर्दन में यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू से वह खत्म हो गए। क्या ही धन्य और खूबसूरत सुसमाचार है यह। हम इस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करके पाप के चक्र से बच गए हैं, हमारे सारे पापों से शुद्ध हुए हैं और परमेश्वर के छुटकारे की व्यवस्था में पवित्र हुए हैं। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू सुसमाचार है जो सारी मनुष्य जाति को बचाता है। हमें सच में इस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर कहता है रोमियो की पत्री अध्याय 14:23 में, और जो कुछ विश्वास नहीं वह पाप है। इसी तरह हम केवल तभी आशीषित होंगे जब हम इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करेंगे। इस हकीकत को जानते हुए कि यीशु ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा सारे पापों को उठा लिया था, क्या अभी भी आपके दिल में पाप है? यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया। बाइबल में जो लिखा है उसे आपको मानना चाहिए। केवल यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू का सुसमाचार आपके पापों को मिटा सकता है और आपको मृत्यु और दूसरे शापों से बचा सकता है। बपतिस्मा लेने का मतलब है साफ होना, डूबना, गड़ाना, के ऊपर डालना और स्थानांतरित करना। सारी मनुष्य जाति यीशु ने दिए हुए खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करके माफी पा सकती है। इसीलिए यीशु ने खुद को स्वर्ग का द्वार कहा है। हम उस पर विश्वास करके स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। वह हमारा प्रभु है जिसने हमें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास दिया है। हम उसके बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करने की वजह से सारे न्याय हमारे उसके ऊपर डाल सकते हैं और हम बच सकते हैं। शाप खत्म हुआ और नदी कोरी भूमि बन गई, क्योंकि याजकों ने वाचा का संदूक उठा के विश्वास से पानी में अपने पांव को रखा था। परमेश्वर ने यह योजना बनाई थी और यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू ने यह योजना को पूरा किया। यह कितना खूबसूरत सुसमाचार है। यह उद्धार की व्यवस्था थी और इसके बिना हमारा उद्धार असंभव होता। जो लोग इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे अब यर्दन नदी पार कर सकते हैं और कनान देश में प्रवेश कर सकते हैं। नदी कोरी भूमि बन गया, इसका मतलब है कि जगत के सारे पाप यीशु पर चले गए और हमारे लिए उसका न्याय हुआ। यही वह सुसमाचार है जो हमें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास देता है। परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को बनाया वह जानता है कि साधारण मनुष्य का IQ तकरीबन 110 से 130 है, इसलिए वह पवित्र आत्मा के इस सत्य को पेचीदा नहीं बना सकता। परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू से उनके सारे पापों को उठा लिया। उसने पानी और पवित्र आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा को पाना संभव बनाया जिससे वे सभी यह जान सके। आप भी इस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा के अंतर्निवास को जान पाएंगे। बाइबल में जो लिखा है उसके मुताबिक हम केवल पश्चाताप की प्रार्थना करके पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। लोग सोचते हैं कि जब वे बहुत ज्यादा प्रार्थना करेंगे तब उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और यह उन्हें परमेश्वर की संतान बनने के लिए जरूरी है। इसलिए कहा है कि जिसने पवित्र आत्मा पाया है वह निश्चित तौर पर परमेश्वर की संतान बनेगा। जो लोग खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि उन्हें निश्चितता हो कि वे परमेश्वर की संतान है। यदि लोग यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन सुसमाचार को नहीं जानते या विश्वास नहीं करते, वे इस बात में सुनिश्चित नहीं हो सकते कि उनके पास यीशु पर चले गए हैं कि नहीं चले गए। इसलिए सारे लोगों को यह जानना है और विश्वास करना है कि यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू खूबसूरत सुसमाचार है जिसने हमारे पापों को मिटाया है। यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया है, इस बात की गवाही कौन दे सकता है? वह यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और जगत के सारे पापों को उठाया। यह योजना परमेश्वर ने हमारे खुद के लिए बनाई थी। उसकी योजना को किसने पूरा किया? यीशु ने पूरा किया। इस योजना की परिपूर्णता की निश्चितता कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। त्रिएक परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाने के लिए यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू से पापों की माफी की इस योजना को परिपूर्ण किया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है और निश्चितता देता है कि जब यीशु ने परमेश्वर की योजना को परिपूर्ण किया, तब हम हमारे पापों से बचाए गए। क्या इस संसार की दिखाई देने वाली चीजें असाधारण है? और आपके विचार कितने असंगत है? व्यक्ति तब तक खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक वह अपने विचारों को छोड़ न दे। कई सारे लोग आज मसीहत के जिस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह यह है कि मूल पाप चले गए हैं, लेकिन वास्तविक पाप तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम पश्चाताप की प्रार्थना नहीं करेंगे। हालांकि यह संपूर्ण सत्य से कोसों दूर है। यह झूठा सुसमाचार है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक नहीं समझ सकते, और जैसे समय बीतेगा वैसे यीशु का अनुसरण करने में आपको ज्यादा मुश्किली होगी। इसलिए मसीहियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो भिन्न सुसमाचारों और भिन्न परमेश्वर में विश्वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है। हो सकता है कि यह मुमकिन लगे, लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा। यह सच्चा सुसमाचार है और पवित्र आत्मा उन पर आता है जो इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को पाया है। क्या पवित्र आत्मा तब दिया जाता है जब लोग केवल माफी की भीख मांगे? परमेश्वर न्यायी है। पवित्र आत्मा इस तरह नहीं आ सकता, क्योंकि उसे उन पर दया आती है। भले ही लोग कठिन रीति से रोए या प्रार्थना करें, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं आ सकता। वे उन पर आता है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए अपनी योजना को परिपूर्ण किया है। आपको यह दिमाग में रखना होगा कि आप भले ही लंबे समय से परमेश्वर के लिए रो रहे हैं या कठिन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। हालांकि इस जगत में मनुष्य जाति का ऐतिहासिक फैसला भी बदल सकता है, लेकिन खूबसूरत सुसमाचार और पवित्र आत्मा के अंतर्निवास के नियम कभी नहीं बदल सकते। उसे वे कभी नहीं बदल सकते। यदि लोग खूबसूरत सुसमाचार को नहीं समझते तो उनके लिए सच्चे विश्वास की ओर वापस लौटना कठिन है। यह इस कारण है कि कई लोग पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं पा सकते हैं। आपके लिए कितने शर्म की बात होगी कि यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन आप खूबसूरत सुसमाचार को नहीं जानते, इसलिए आपका नाश होगा। बाइबल यह कहती है कि कुछ लोगों के लिए खूबसूरत सुसमाचार अवरोध और हानि का पत्थर है। यदि आप यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा के रहस्य को समझ गए हैं तो आपके पापों को भी माफ किया जाएगा और आप पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाएंगे। उसने बपतिस्मा लेकर क्रूस पर मर के और पुनरुत्थित होकर सारे पापियों को बचाया। यीशु ने हमें जो छुटकारा दिया है वह उद्धार की उचित रीति है। वह सारे पापियों का सच्चा उद्धारकर्ता बन गया और पवित्र आत्मा के अंतर्निवास को सुनिश्चित किया। केवल यदि आप इसमें विश्वास करते हैं। पुराने नियम में यह दर्ज है कि जब याजकों ने अपने पैर पानी में रखे तब नदी कोरी भूमि बन गई, यानी पानी इकट्ठा हो गया। यह चमत्कार काफी है, लेकिन और चमत्कार होने वाले थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि नदी कोरी भूमि में तब्दील हो गई। यह घटना परमेश्वर के उद्धार की निश्चितता बनी, जिसके बाद यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू से पाप की माफी मिली। कोरी भूमि दर्शाती है कि जगत के पाप कैसे माफ होने वाले हैं। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू को धन्यवाद। आदम से निकलकर सारे पाप मनुष्य जाति में चले गए, लेकिन न्याय का शाप यीशु के बपतिस्मा के साथ खत्म हुआ। अब हमें विश्वास के द्वारा हमारे पापों की माफी पानी है और पवित्र आत्मा का अंतर्नियम पाना है। क्या आप खूबसूरत सत्य पर विश्वास करने के यीशु के यर्दन नदी में अपने बपतिस्मा से आपके सारे पापों को ले लिया है? आपको विश्वास करना चाहिए कि जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया। इसके अतिरिक्त आपको यह भी जानना, समझना और विश्वास करना होगा कि उसका बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। यदि याजक यर्दन में प्रवेश नहीं करते तो इसराइल के लोग कनान देश में सफलता के साथ प्रवेश नहीं कर पाए होते। कनान देश में प्रवेश करने के लिए पहला कदम था यर्दन नदी को पार करना। इसलिए जब हम वाचा के संदूक के साथ नदी को पार करते हैं केवल तभी हम कनान में प्रवेश कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि व्यक्ति पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने पापों से माफी पा सकता है। बाइबल बताती है कि यीशु का बपतिस्मा परमेश्वर का कार्य था। याजकों के संबंध में भी यही था। जैसे याजकों ने पानी में अपने पैर को रखा तब यरदन का पानी इकट्ठा हो गया, वैसे ही जगत के लोग इस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा बचाए जाते हैं। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास इस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास के आधार पर दिया जाता है। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू आपके पापों की माफी और पवित्र आत्मा पाने में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाने के लिए यह पानी और आत्मा का खूबसूरत सुसमाचार अनिवार्य है।